أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فنا کی حقیقت ایک ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز یقینی اور واضح اور ظاہر نہیں ہے. ہمیں واقعہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی پیدا ہوتی ہے تو بلا شبہ موت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کوئی زندگی ایسی نہیں جسے بقا ہو اور جس کا انجام موت تک نہ پہنچے. جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے بھی فنا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا زندہ نہ ہو. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو اس آیت میں بیان فرمایا جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ کلو من علیہ فان، کہ ہر چیز جو بھی کائنات میں تمہیں دکھائی دیتی ہے یا زمین پر تم دیکھتے ہو وہ فانی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، وہ بالآخر فنا ہو جائے گی. سائنسدانوں نے اس مسئلے پر بہت غور کیے. ایک زمانے میں وہ سمجھتے تھے کہ ایٹم انڈسٹرکٹیبل ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا. پھر ایک دور ایسا آیا جب تحقیق نے قطعی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ ایٹم کو بھی فنا ہے، اور اسی فنا کے نتیجے میں جو سائنسدانوں کو معلوم ہوئی پھر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بموں کی ایجاد ہوئی. پھر ایک وقت ایسا تھا اور ابھی تک یہ دور چل رہا ہے جبکہ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پروٹون کو فنا ہے یا نہیں ہے، لیکن دن بدن سائنسدانوں کا زیادہ گروہ اس بات کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پروٹون کو بھی بالآخر فنا ہے. اور اب تک جو حساب دانوں نے حساب لگائے ہیں ان میں ہمارے مشہور نوبل لوریٹ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی ہیں، اور ان کے فارمولے کے مطابق غالباً 10^33 عمر ہے پروٹون کی، اور اس کے بعد پروٹون کو بھی فنا ہوگی. چنانچہ اربوں ڈالر کے خرچ سے امریکہ میں، اٹلی میں، بعض دوسرے مقامات پر یہ تجارب کیے جا رہے ہیں جن سے قطعی طور پر معلوم ہو سکے کہ پروٹون بالآخر فنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کتنی مدت میں. اور قرآن کریم نے आज से 1400 साल पेशतर ये कायदा कुल्लिया बयान फरमाया था कि कुल्लु मन अलैह फान, हर चीज को फना है, खा उसका नाम प्रोटॉन रखो या एटम रखो या इलेक्ट्रॉन रखो या मुआन रखो, सब पार्टिकल करार दो या कुछ और कह दो, हर पहलू से बिला ठीक नहीं काम कर रहा। कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो फना से बाला हो, बस इस लिहाज से ये एक ऐसी जाहिर हकीकत है, ऐसी कती ऐसी यकीनी कि हर वक्त नजर के सामने रहती है और नजर के सामने रहनी चाहिए। लेकिन एक और पहलू से देखें तो सबसे ज्यादा महूम हकीकत फना को है, यानी इंसान अपने शऊर की दुनिया में मौत से डरने के बावजूद इसे अपने से बहुत दूर देखता है और गिर्दोपेश तो देखता है लेकिन अपनी जात पर मौत की हकीकत का इतलाक नहीं करता, और मौत की हकीकत का अपनी जात पर इतलाक करने के नतीजे में जो लाजमी नतायज उसकी जिंदगी पर पड़ने चाहिए उनसे वो महरूम रह जाता है। इस आयत करीमा में जहां ये फरमाया गया कि कुल्लु मन अलैह फान, हर चीज को फना है, उसके बान बाद साथ ही ये ऐलान भी फरमा दिया गया वयबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक चीज ऐसी है जिसे कोई फना नहीं, वो तेरे रब का चेहरा है, ज़ुल जलाल वल इकराम, वो साहेब जलाल है और साहेब इकराम है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ना फरमाया कि रब को फना नहीं है बाकी हर चीज को फना है, ये क्यों फरमाया कि वजह रब्बे का, तेरे रब के चेहरे को फना नहीं है, हालांकि असल लाफानी हकीकत तो खुदा ताला की जात है, उसी से हर दूसरी चीज को बका हासिल होती है, और अगर हर दूसरी चीज को फना है और खुदा को नहीं तो फिर दूसरा सवाल यह भी उठता था कि वो तमाम नेक रूहें जिन्होंने खुदा से ताल्लुक जोड़कर एक किस्म की बका हासिल कर ली, क्या इस आयत करीमा का इतलाक उन पर भी होगा और वो भी फना हो जाएंगी, क्या जन्नत को भी फना है और अहले जन्नत को भी फना है, या सिर्फ जमीन पर बसने वालों का जिक्र किया जा रहा है। इन तमाम उमूर का जवाब दर हकीकत कुरान करीम की इस आयत ने हमें दे दिया, खा हम गौर करें या ना करें लेकिन जवाब इसमें मौजूद है, और वो ये है कि खुदा ताला ने यह नहीं फरमाया कि तेरे रब के सिवा हर चीज को फना है, बल्कि फरमाया वजह रब्बे का के सिवा हर चीज को फना है, और वजह रब्बे का के साथ जुल जलाल वल इकराम की सिफात बयान फरमाई। वजह का एक तो आम माना है चेहरा, और सवाल दूसरा यह भी पैदा होता है कि चेहरे को फना नहीं है, गोया खुदा का कोई चेहरा है और क्या नाऊज़ बिल्लाह बाकी जात को फना है, अगर ये माने नहीं और यकीनन नहीं और बिल्कुल गलत और लग्व माने हैं तो फिर वजह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया गया। वजह का माना सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि रजाए बारी ताला है, और जिन लोगों में रजा जिन लोगों को नसीब हो जाती है वो साहिब रजा बन जाते हैं, और दर हकीकत वही चेहरे हैं खुदा के इन मानों में। बस जब ये फरमाया गया कि वजह रब्बे का के सिवा बाकी हर चीज को फना है तो मुराद ये है कि हर चीज फानी है मगर वो जो खुदा से ताल्लुक जोड़कर उसकी रजा की मजहर बन जाती है, और जो भी खुदा से ताल्लुक जोड़कर उसकी रजा का मजहर बन जाता है वही खुदा का चेहरा है, क्योंकि खुदा की जाते ही तो दिखाई नहीं देता। हजरत अब्दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो बारहा हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्किया कलाम में यह फरमाया कि तुझसे हमने खुदा को देखा है, तेरे देखने से खुदा देखा, तो दरअसल इसी आयत की तफसीर है, खुदा के चेहरे साहिब खुदा लोग हुआ करते हैं। और जैसा कि इस आयत में ये खुशखबरी अता फरमाई गई है कि हर चीज मिट जाएगी मगर वो लोग जो खुदा की रजा के मजहर बन जाते हैं, जिनके चेहरों में खुदा दिखाई देने लगता है, यानी बसूरत दीगर जो खुदा का चेहरा बन जाते हैं, जिनको देखकर खुदा दिखाई देता है, उन पर कभी कोई फना नहीं है। बस इस पहलू से हकीकत मोहम्मदीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाफानी हकीकत बनती है जिसके ऊपर किसी फना का कोई तसव्वुर बांधा नहीं जा सकता। और उसी निस्बत से नेक आमाल इख्तियार करने वाले खुदा के वो आजिज बंदे जो खुदा की रजा की चादर ओढ़ लेते हैं और अपनी रजा को मिटाने लग जाते हैं उसके उस रजा के ताबे, वो रफ्ता रफ्ता बाखुदा इंसान बनते हुए खुदा के चेहरे बनने के मुस्तहिक बन जाते हैं, खुदा के चेहरे कहलाने के मुस्तहिक बन जाते हैं। और इस पहलू से उनको भी कोई फना नहीं। बस इस पहलू से गौर करते हुए जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस मजमून का इतलाक करते हुए करके देखते हैं तो बावजूद इसके कि इंसान फना को हर तरफ से अपने वजूद को घेरे हुए देखता है, बावजूद इसके कि दर हकीकत फना के सिवा और कोई भी हकीकत दिखाई नहीं देती, बाकी सारी बातें अफसाने बन के रह जाते हैं, जो चीज बाकी रहने वाली दिखाई देती है वो फना है, कोई ऐसी हकीकत नहीं जो फना की दस्तबुद से पाक हो, बाला हो, उससे मुस्तस्ना हो। इसके बावजूद हम फना को भूल जाते हैं और जो छोटी सी जिंदगी चंद लम्हों की हमें नसीब होती है इसी को बका समझने लग जाते हैं। हालांकि कुरान करीम फरमाता है कि इन तुम्हारी जिंदगियों की या उन वजूदों की के अरसे हयात में रहें या अरसा क्याम की कोई भी हकीकत नहीं, खा वो अरबों साल भी रहे, बिल आखिर लाजिमन उन्होंने मिटना है। और इसके बावजूद कि हम फना को इस तरह नहीं देखते जैसे देखना चाहिए, हम हयात से चिमटते हैं और हयात ही को सब कुछ समझते हैं, अपनी हयात को लंबा करने का कोई सामान नहीं करते, ये वो इंसान की गफलत की हालत है जिसके नतीजे में तमाम दुनिया में बदामालियां फैलती हैं और इंसानी जिंदगी सदाकतों से महरूम रह जाती है। हम हकीकत में जिस जिंदगी को चिमटते हैं उसे लंबा भी करना चाहते हैं और खा अपनी जात के मुतल्लिक यकीनी तौर पर ये ना भी समझें कि हमने आज नहीं तो कल गुजर जाना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ना भी ढालें, तब भी जैसी भी हमारी जिंदगी है उसे लंबा करते चले जाते हैं, लंबा होते हुए देखना चाहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, एक तो फिजाते ही इंसान अपने लिए हर किस्म की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी को का अरसा बढ़ता चला जाए और ज्यादा देर वो इस दुनिया में सांस ले सके, दूसरे इल्म के जरिए दुनिया में फैलता है और अपनी जात को कायनात पर इल्म के जरिए और जस्तजू के जरिए फैलाता है। बस इस हैसियत से जितना साहिब शऊर और साहिब इल्म इंसान हो उतना ही ज्यादा वो जिंदा रहता है। एक बेवकूफ और कम नजर इंसान भी बजाहिर उसके साथ अरसा हयात में शरीक दिखाई देता है, लेकिन वो शख्स जिसकी नजर महदूद हो, वो थोड़ी बातें देख रहा हो, उसकी जिंदगी का मासल बहुत ही छोटा होता है। वो शख्स जो साहिब इल्म और इरफान है उसकी नजर कायनात पर फैली होती है, उसके मुताबिक दर हकीकत उसकी जिंदगी ज्यादा वसी और भरपूर होती है। चुनाचे कुछ वक्त में लंबा होकर कुछ कायनात में फैलकर इंसान अपनी जिंदगी को वसत देता चला जाता है और फिर अपने मरने के बाद अपनी औलाद के जरिए एक किस्म की बका हासिल करता है। इसीलिए वो लोग जो औलाद से कुलियतन महरूम हो वो बहुत बेचैन और बेकरार रहते हैं, کیونکہ در حقیقت نفسیاتی نقطہ یہ بنتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ تو دوسرے لوگ تو باقی رہیں گے، ہم اپنی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اور ہماری اولاد جو پیچھے، ہماری اولاد پیچھے کوئی ایسی نہیں آئے گی جو ہمارے وجود کو ایک نئی خلقت عطا کرے اور ہمارے وجود ان کی شکلوں میں زندہ رہے اور پھر ان کے بعد میں آنے والے بچوں کی شکلوں میں زندہ رہے۔ اسی لیے مائیں اولاد سے بعض دفعہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں، کیونکہ در حقیقت وہ اپنی زندگی کی بقا اپنی اولاد میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مستقبل چونکہ ایک لامتناہی چیز ہے اور حال کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے جو گہری محبت کرنے والی مائیں ہیں وہ لا غیر شعوری طور پر اس مسئلے کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے اولاد سے اس لیے محبت کرتی ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا مستقبل ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اولاد کے ذریعے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہ تم اپنی ذات میں مستقل زندہ رہ سکتے ہو، نہ اپنے علم کے لیے ذریعے مستقل زندہ رہ سکتے ہو، نہ تم اپنی اولادوں کے ذریعے مستقل زندہ رہ سکتے ہو، کیونکہ کل من علیہ فان، اس زندگی اس کائنات میں فنا کا ہاتھ ہے جو سب ہاتھوں سے لمبا ہے، ہر عرصہ حیات پر محیط ہے، ہر وجود پر اس کی دسترس ہے، بس کسی قیمت پر بھی تمہیں بقا نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں بقا کی تمنا ہے اور سچی تمنا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہو، اور وہ ہے وجہ رب کا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کے وجہ کو پانے کی کوشش کرو، جس کا مطلب ہے رضائے باری تعالیٰ۔ اور جب تم رضائے باری تعالیٰ حاصل کر لو گے تو خدا کی رضا کو کوئی فنا نہیں ہے، خدا کی رضا میں ہو کر تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے اور لامتناہی زندگی پالو گے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہماری زندگیاں بہت سی برکتوں اور نعمتوں سے محروم کٹتی چلی جاتی ہیں۔ ہم میں سے بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو بے چین ہیں، وہ لوگ جنہیں چین نصیب ہے وہ چین بھی ان کا عارضی ہے، اور چین پر بھی ہمیشہ فنا آ جاتی ہے۔ اگر فنا نہیں ہے تو ایک معنوں میں بےقراریوں کو فنا نہیں ہے، حسرتوں کو فنا نہیں ہے، کیونکہ وہ موت کی مثال ہے۔ بس اس پہلو سے اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں تو ہم میں سے اکثر ہم وقت بے چین رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پانے کے باوجود بے چین رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تمنائیں، ان کے حصول کی خواہشیں ان کی دسترس سے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی حسرتیں انسان اپنے دل کی نکال سکتا ہے، نکال چکتا ہے، تو اس سے زیادہ اور حسرتیں دل میں آ کے جگہ بنا لیتی ہیں۔ اسی مضمون کو غالب نے یوں بیان کیا تھا گناہ کی نسبت سے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، اے خدا گناہوں کی بھی تو کبھی حسرت ہماری پوری نہیں ہو سکی، جتنے گناہ کرتے چلے گئے گناہ کی طلب اور بڑھتی چلی گئی، اور کبھی زندگی میں گناہگار کو جس نے سب طرح سے کھلی ڈور چھوڑ دی ہو، جس نے اپنے آپ کو ہر طرح کھلی چھٹی دے رکھی ہو، اس کو بھی گناہ اس حد تک کرنے کی تسکین نصیب نہیں ہوئی کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ اسی مضمون کو غالب ایک اور شعر میں یوں بیان کرتا ہے کہ دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا، کہ میرے گناہوں کا جو سیلاب ہے وہ اپنا جوش مارتے ہوئے تیز رفتاری کی وجہ سے خشک ہو گیا، اور ابھی تو میرا دامن بھی نہ بھیگا تھا۔ بس کسی پہلو سے آپ دیکھ لیں انسان کو مستقل چین نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی نہ کسی پہلو سے چین کی تلاش میں رہتا ہے، اور وہ ایک راہ जो चैन के नसीब की खुदा ताला ने बयान फरमाई है उससे वो गाफिल रहता है। कुरान करीम ने जहां ये फरमाया कि वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम एक बाकी रहने वाली हकीकत है, तो साथ ये भी बता दिया कि रजाए बारी ताला को दवाम हासिल है और दर हकीकत तस्कीन कल्ब दवाम से नसीब हो सकती है। इसी बात को एक और आयत में खोलते हुए बयान फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अगर तुम दिलों की सकीनत चाहते हो, तमानियत चाहते हो, तो याद रखना कि जिक्र इलाही के सिवा तुम्हें कभी सुकून नसीब नहीं हो सकता। बस तस्कीन की राह भी वही है जो बका की राह है, और दरअसल ये एक दूसरे के मुख्तलिफ नाम है। तस्कीन और बका हकीकत में एक ही चीज के दो नाम है, और ये दोनों चीजें खुदा ताला की जात से वाबस्ता हैं। अगर हम इस मजमून को समझें और गौर करें तो हमारी जिंदगी के नक्शे बदल जाएं। कितने बेचैन लोग हैं जो इस यूरोप में बस रहे हैं, जो दुनिया के लिहाज से तरक्की के आखिरी जीनों पर दिखाई देता है, अगरचे तरक्की का कोई आखिरी जीना नहीं, लेकिन नीचे से जब वो तीसरी दुनिया की कौमें इनको देखती हैं तो यूं लगता है जैसे ये आसमान से बातें कर रहे हैं। लेकिन यहां भी आप इनके सीने टटोल कर देखें, इनमें दानिश्वर हों या गैर दानिश्वर हों, मजदूर हों या मालिक हों, सब बेचैन हैं, किसी को चैन नसीब नहीं। आप अहमदियत के नुमाइंदा बनकर इस मुल्क में ये पैगाम लेकर आए हैं कि अगर तुम चैन चाहते हो तो हमसे हासिल करो, हम तुम्हें चैन की राह दिखाते हैं, हम तुम्हें सकीनत का खजाना अता कर सकते हैं। और अहमदियत के पैगाम में जो हकीकी इस्लाम है दरअसल यही पैगाम है। लेकिन ये कहने के बाद अगर हम दयानतदारी से अपने नफूस का जायजा लें, अपने दिली अपने कल्बी हालात का जायजा लें, तो हमें मालूम होगा कि हम में से अक्सर सकीनत के लिहाज से खाली बर्तन हैं। ये दुरुस्त है कि दुनिया में 100 किस्म की बेइत्मीनानी पैदा करने वाली वजूहात मौजूद हैं, और बसा औकात ऐसी तमन्नाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उन सब तमन्नाओं के उन हसरतों का दुख दूर करने का इलाज भी इन्हीं आयात में है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब और यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। मसलन वो बेचैन माएं जो औलाद से महरूम रहती हैं, वो बेकरार होकर खत लिखती चली जाती हैं, बाज़ दफा ऐसे दर्दनाक खत मिलते हैं कि उसके नतीजे में दुआ की तजवीज़ भी खास होती है, बाज़ दफा खुदा बिशारत अता फरमाता है, बाज़ दफा कबूलियत दुआ के आसार इंसान देख लेता है, और बाज़ दफा ना वो दुआ का जज्बा पैदा होता है ना कबूलियत के आसार दिखाई देते हैं, वो मामले इसी तरह लटके चले जाते हैं। और वो रूहें जो अपनी तमन्नाओं से महरूम रहती हैं, वो बेचैन रहती हैं, उसी तरह बेकरारी में दिन गुजारती चली जाती हैं। बल्कि बाल औरतों के खत तो फिर दिनों के हिसाब लेकर आते हैं कि आज मेरी शादी को 30 साल इतने दिन हो चुके हैं और आज तक मैं औलाद से महरूम हूं। हालांकि अमरे वाकया ये है कि अगर कोई खुदा ताला की हस्ती पर सच्चा ईमान रखता हो और कायनात का शऊर रखता हो, मौत और हयात के फलसफे से आगाह हो, अगर कुरान करीम की आयत पर उसकी नजर हो कि कुल्लु मन अला अफान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तो औलाद की तमन्ना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन औलाद के ना होने के नतीजे में वैसी बेकरारी उस शख्स को नहीं हो सकती जैसे एक बेदीन शख्स को होती है। वो ज्यादा तेजी के साथ खुदा की तरफ झुकेगा और खुदा की रजा हासिल करके अपनी जात को खुदा की जात में एक दवाम बख्शेगा, खुदा की रजा के जरिए अपने आप को हमेशा की जिंदगी अता कर सकता है। और जिसको खुदा ताला की जात नसीब हो जाए उसके दिलों के खला दूर हो जाया करते हैं। दुनिया की कमजोरियां, दुनिया की महरूमियां दिखाई तो देती हैं, महसूस भी होती हैं, लेकिन बेहकीकत बनकर। इसके बरक्स जो दुनिया में डूब जाते हैं, उन्हें दुनिया के गम और दुनिया की तकलीफें इतनी बड़ी दिखाई देती हैं कि उनके वजूद पर कब्जा कर लेती हैं, उनको गिरा देती हैं, बाज़ दफा अपने पांव तले मसलती चली जाती हैं और सारी जिंदगी ऐसे अशख़ास की दुखों और मुसीबतों में कटती है। बस अगर आपने हकीकत में तस्कीन का गुर हासिल कर, तस्कीन का गुर सीखना है, तस्कीन पाने का गुर सीखना है, अगर आपको हकीकतन तस्कीन की तलाश है, तो याद रखें कि तस्कीन बका से नसीब हुआ करती है। हर वो दुख जिसको आप महरूमी कहते हैं, उसका किसी न किसी शक्ल में मौत से ताल्लुक है। हर वो चीज जिसको आप खुशी कहते हैं, उसका किसी न किसी शक्ल में बका से ताल्लुक है। ये मजमून बहुत तफसीली मुतालिया का मोहताज है और इस मौके पर यह मुनासिब नहीं होगा कि इसकी तफासील में जाकर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह हर महरूमी और हर दुख का किसी न किसी शक्ल में मौत से ताल्लुक है और हर खुशी का और हर हसूल का किसी न किसी रंग में जिंदगी से ताल्लुक है। लेकिन है यही कुछ हकीकत, इसके सिवा और कोई हकीकत नहीं। इस पहलू से जब खुदा तआला ने यह बता दिया कि वजह रब्बे का को बका है और उसे कोई जवाल नहीं, तो एक इतनी गहरी हकीकत है, ऐसा अजीम इरफान का खजाना अदा कर दिया गया है कि जिससे बढ़कर दौलत नसीब ही नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि इंसान खुदा ताला के वजह को कोई अहमियत नहीं देता और दुनिया की लज्जतों को करीब देख रहा होता है और खुदा ताला के की रजा के चेहरे को दूर बैठा हुआ देखता है और मुश्किल समझता है, इसलिए वो सुनता है और दिल में जागजी करने की बजाय, इस बात पर गौर करने की बजाय और इससे फायदा उठाने की बजाय, वो सुनकर आगे गुजर जाता है जैसे अनसुनी कर दी गई हो। बस जमात अहमदिया को याद रखना चाहिए कि उनकी तरबियत के लिए और उनकी कामयाब जिंदगियों के लिए इस गुरु को ना सिर्फ समझना जरूरी है बल्कि इसको अपना लेना जरूरी है, इसके साथ चिमट जाना जरूरी है। वो लोग जिनको खुदा दिलों में महसूस होना शुरू हो जाए, उनकी जिंदगियों की काह पलट जाती है, उनके गमों, उनके दुखों, उनके फिक्रों की नौइयत बिल्कुल और हो जाती है। ये सारी हकीकतें उनको आर्जी दिखाई देती हैं और उस वक्त ये आयत एक और खुशखबरी लेकर उन बजाय खौफ के एक और खुशखबरी लेकर उनके लिए आती है और वो ये है कुल्लु मन अलैहा, यानी ये तंबीह की बजाय बाखुदा लोगों के लिए खुशखबरी बन जाती है। वो समझते हैं कि दुख भी सारे आर्जी हैं, दुनिया की हकीकतें सारी बेमानी हैं, जो चीजें हमें हासिल नहीं हुई उन्होंने कब बाकी रहना है, जो दूसरों ने हत्या ली है या कब्जा कर बैठे हैं वो उन पर कब तक रहेंगे, आखिर हर एक ने इस दुनिया से चले जाना है और खुदा तआला के हुजूर हाजिर हो जाना है। वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो वजह रब्बे का काम आएगा, यानी खुदा की रजा है जो तुम्हारे काम आ सकती है, बाकी सारी चीजें इस दुनिया में बाकी पीछे रह जाएंगी और जो पीछे रह जाएंगी वो भी फना हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। बस ये आयत जो बजाहिर शुरू में कम से कम एक ऐसे शख्स को जिसको खुदा का इरफान हासिल नहीं, डराती है और बहुत ही खौफनाक ऐलान दिखाई देता है, कुल्लु मन अलैहा, जब इंसान वजह रब्बे का से ताल्लुक जोड़ ले और सहारा खुदा की जात का ले ले, तो अचानक ये आयत जो पहले डराती हुई दिखाई देती थी एक खुशखबरी में तब्दील हो जाती है। फिर इंसान को सब्र की भी तौफीक मिलती है, फिर इंसान यह समझता है कि मैं तो खुदा का हो चुका, खुदा की रजा मैंने दिल में बसा ली, खुदा की रजा की लज्जत महसूस करने लगा हूं, ये तकलीफें जो हैं ये आर्जी हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इन्होंने लाजमन फना हो जाना है, मगर मेरी लज्जत हमेशा बाकी रहेगी, मेरे सुकून को दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती, ये पैगाम देने लग जाती है यह आयत करीमा। और जब तक हम इस तजर्बे से गुजरे ना, हम अहले यूरोप की जिंदगियों को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया है, इन सब के अंदर रोज अफजू बढ़ती हुई प्यास का एहसास बढ़ता चला जा रहा है। प्यास तो सदियों की है, लेकिन उसका एहसास कभी इस तेजी के साथ नहीं बढ़ा था जितना इस दौर में बढ़ रहा है। इनकी नई नस्लें महरूमी को अपनी आंखों के सामने देख रही हैं, अपनी तहजीब से बददिल हो चुकी हैं, अपने माशरे से बददिल हो चुकी हैं, अपनी सिविलाइजेशन से और उन तमाम अकदार से जिनको मगरबी सिविलाइजेशन कहा जाता था, उनसे आखिर मायूस हो चुकी हैं। और दिन ब दिन ये शऊर बढ़ता चला जा रहा है कि हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और इस तलाश में कि कुछ हासिल हो जाए, सरगर्दान कभी किसी रुख पर उठ दौड़ती हैं, कभी किसी और रुख पर उठ दौड़ती हैं, तलाश में हैं, लेकिन ये पता नहीं कि क्या तलाश कर रही है और कैसे हासिल किया जा सकता है। इनको तबलीग करने का सिर्फ एक ही मौसर और ठोस और कारामद तरीक है, बाकी सारी बातें मंतक के एच पेच हैं, उनके जरिए आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, और वो खुदा की जिंदा हकीकत को इनके सामने पेश करना है। एक ही जरिया है जिससे आप इनकी अपनी जात में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं, और वो जरिया है आपका अपना वजह रब्बे का बनने की कोशिश करना, ऐसा वजूद बनना जिसमें खुदा के चेहरे दिखाई देने लगे। और वो एक ऐसी कशिश है जो हर दूसरी चीज पर लाजमन गालिब आने वाली कशिश है। इनको ये पैगाम देने की जरूरत है कि लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब यह मिसरा फरमाया तो यह कोई सोची समझी बात का नतीजा नहीं था, यह एक तजुर्बे के नतीजे में खुद ब खुद दिल से फूटने वाला मिसरा है। आओ लोग कि यही नूर है खुदा पाओ, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया। जिस शख्स ने नूर खुदा को ना पाया हो उसके मुंह से यह फिक्र निकल, ये मिसरा निकल नहीं सकता। यही तौर तसल्ली का उस वक्त भी था और आज भी है। और जिस तरह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तसल्ली का यह तौर बताकर साहिब तसल्ली लोग पैदा कर दिए अपने गिर्दो पेश में, उन लोगों के हालात तब्दील करने शुरू कर दिए जो मुख्तलिफ हालात में आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, उनके ताल्लुकात दुनिया से टूटने शुरू हुए और खुदा ताला से बनने शुरू हुए, यहां तक कि देखते देखते उनकी काया पलट गई। और वो यही पैगाम लेकर फिर दुनिया के सामने निकले कि आओ लोगों कि यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। मैंने सहाबा की जिंदगी पर गौर किया है तो यही खुलासा मुझे उनकी जिंदगी का मिला कि वो उनमें साहिब इल्म भी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरूरी नहीं था कि जो साहिब इल्म था वही दूसरी सोसाइटी पर गालिब आया हो। बाज बिल्कुल दुनिया के लिहाज से बेइल्म थे जिनको खुदा ताला ने गलबा अता फरमाया था, वो अपने माहौल पर जहां जाते थे गालिब आ जाते थे, और उनके जरिए खुदा ताला के फजल के साथ अहमदियत का पैगाम दूर नजदीक हर तरफ फैलाया, और कभी किसी सोसाइटी में वो लोग मगलूब नहीं हुए। इल्म की वजह से नहीं, या इल्म के फुकदान की वजह से नहीं, जो कुछ हो रहा था वो खुदा के होने या ना होने के नतीजे में हो रहा था। सहाबा के अंदर खुदा मौजूद था, उन्होंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से तसल्ली का यह तौर सीख लिया था, और उनके दिल तमानियत से भर गए थे, वो ऐसी तमानियत से भर गए थे जो नूर खुदा के सिवा नसीब नहीं हो सकती। और यही उनकी दौलत थी, ये उनकी रोशनी थी जिससे वो अंधेरों में उजाले कर रहे थे। और दुनिया वाले हां कितनी ही मुखालफत करने वाले हों इन नजरियाती लिहाज से, जब वो आंखों के सामने खुदा की सिफात के निशान देखते हैं, जब वो खुदा के चेहरे को जलवागर देख रहे होते हैं, तो रफ्ता रफ्ता उनकी सारी मुखालफतें अगर उनमें कोई सदाकत का मादा मौजूद है मगलूब होने लग जाती।
यही वो नूर है जिसके मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है जाल हक हो वजाहत अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया है और बातिल के मुकद्दर में भागने के सिवा कुछ भी नहीं। इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल के तो नसीब में ही भागना है, इसलिए बातिल भाग गया है। बस ये वो गलबे का आखिरी और गालिब आने वाला मफहूम है, जिसको समझकर, जिसको अपनाकर, अपनी जिंदगी में जारी करके आपको गिर्दो पेश गलबा नसीब हो सकता है। लेकिन ये गलबा दरअसल आपको नहीं बल्कि खुदा के चेहरे को नसीब होगा। इस पहलू से एक और नुक्ता भी हमारे हाथ आया कि वो लोग जो इलाही जमाते हैं जब वो दुनिया में फैलती हैं तो अपनी जात की खातिर नहीं, अपने जलाल और अपने इकराम के लिए नहीं, बल्कि चूंकि वो खुदा के चेहरे को अपना लेती हैं इसलिए जुल जलाल वल इकराम के चेहरे को अपनाकर वो उसकी इज्जत और उसके शर्फ और उसके मर्तबे की खातिर दुनिया में फैलती है। इसलिए नहीं कि उनको कोई गलबा नसीब हो या उनको कोई ताकत अता हो। बस ये फैलाओ दर हकीकत उसी वक्त मुबारक होगा जब ऐसी इलाही जमातों के फैलने के साथ खुदा का चेहरा फैल रहा हो, खुदा का नूर फैल रहा हो। और अगर इसके बगैर आप दुनिया में फैलें तो आपको अददी अक्सरियत तो हासिल हो सकती है, गलबा तो एक किस्म का मिल सकता है, मगर उस गलबे की कोई हकीकत नहीं होगी। अब आप देखें यहोवा विटनेसेस वाले हैं, मॉर्मन्स हैं, इसी किस्म के और बहुत से नए नए फिरके भी निकले हैं जिनको कल्ट कहा जाता है। एक वक्त में हरे कृष्ण वाले स्विट्जरलैंड में और यूरोप के दूसरे मुल्कों में तेजी से फैलने लगे थे, फिर अमेरिका में भी बड़ा इनको नफूज हुआ। सिख बनने का शौक भी यूरोप और अमेरिका में चला। सूफी यानी एक किस्म का फर्जी सूफी जो अपनी जात में डूब कर दरअसल हकीकत गिर्दो पेश से आंखें बंद कर रहा होता है, ऐसा सूफी बनने का शौक भी अहले यूरोप को चला है। ये चीजें आई और रफ्ता रफ्ता फना होती चली गई क्योंकि इनमें दरहकीकत कोई बाकी रहने वाली बात नहीं थी। इन चीजों के फैलने से दरहकीकत खुदा का चेहरा नहीं फैला बल्कि वो फिरके फैले हैं जो दुनिया में अददी अक्सरियत के खां थे और कुछ माली फवायद उनके पेश नजर थे। ये आयत करीमा जो हमें बताती है कि कुल्लु मन अला फान व यबका वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, ये खुशखबरी भी हमें दे रही है कि वो लोग जो वजह रब्बे का के बगैर तेरे रब की रजा के बगैर फैलते हैं उनके फैलने के भी कोई वका नहीं है, वो बेमानी और बेहकीकत अददी अक्सरियत है जिसको हकीकत में कोई भी खुदा की नजर में कोई हैसियत हासिल नहीं, उसने आज नहीं तो कल मिट जाना है। तुम अगर फैलना चाहते हो तो खुदा का चेहरा हासिल करो और वो चेहरा लेकर उस शमा के नूर के साथ फैलो। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि यबका वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, खुदा के चेहरे का जलाल दुनिया में फैलेगा, खुदा के चेहरे का इकराम दुनिया में फैलेगा। बस साहिब खुदा लोग वही हैं जिनके फैलने के साथ खुदा तआला का जलाल, उसकी अजमत और उसका इकराम दुनिया में फैलता है। और इसके बगैर जमात अहमदिया के फैलने का कोई भी माना नहीं, कोई भी हकीकत नहीं है। जर्मनी में खसूसियत से खुतबे के दौरान मैंने इस मजमून को इसलिए चुना है कि जर्मनी जमात अल्लाह ताला के फजल के साथ बहुत सी नेकियों में तरक्की कर रही है और बहुत से खतरात का भी इसको सामना है। जहां तक माली कुर्बानी का ताल्लुक है इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जमात अल्लाह ताला के फजल से अजीम मिसालें कायम कर रही है और आप जानते हैं कि अभी बहुत सी गुंजाइशें बाकी हैं। लेकिन जहां तक इबादतों का ताल्लुक है, जहां तक खुदा को दिल में बिठा लेने का ताल्लुक है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। जहां तक तबलीग का ताल्लुक है, अगरचे आप लोग कोशिश करते हैं, यानी एक हिस्सा आप में से, मगर बहुत भारी अक्सरियत आपकी ऐसी है जो तबलीग के फन से ही वाकिफ नहीं, और जब खुतबात में जिक्र सुनती है तो दिल में एक वलवला सा उठता है, लेकिन एक आरजी चमक की तरह जिस तरह जुगनू अंधेरे में दिखाई दे, फिर वो खुद ब खुद बुझ भी जाता है वलवला, बाकी रहने वाली रोशनी नहीं रहती। और इस वजह से सालाना तबलीग का मासल बहुत थोड़ा है। अगर आप आदाद में अपनी तबलीगी कोशिशों के नतीजे देखें तो बिल्कुल मामूली है। इस लिहाज से मुझे ख्याल आया कि दो बातों की तरफ आपको खसूसियत से मुतवज्जे करूं। अव्वल ये कि तबलीग, कामयाब तबलीग का राज हकीकत में खुदा को पा लेना है, और आपकी इल्मी कमजोरी कभी आपकी राह में हायल नहीं होगी अगर आप साहिब खुदा बन जाए। आपकी मकबूल दुआएं, आपकी नेक अदाएं, आपका उठना बैठना, आपका सलीका, आपका वकार, आपकी बड़ी नौ इंसान के साथ हमदर्दी, जो ये सारे नताइज हैं खुदा वाला बनने के, ये जब आपकी जात में जाहिर होंगे तो लाजिमन आपकी तबलीग मौसर होगी और आप में फैलने की ताकत होगी। दूसरी बात यह कि इस तरह फैलने के नतीजे में जो आदाब आपको नसीब होंगे वो महज गिनती की बातें नहीं होंगी, बल्कि हकीकतन साहिब खुदा लोग ही पैदा किए करते हैं। और ऐसे लोग जो तकवा के साथ तबलीग करने वाले हों, जो नेकी के साथ तबलीग करने वाले हों, उनकी तबलीग का फल भी बाकी रहा करता है। ये राज मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो लोग जो लफाजियों के जरिए और महज मंतक के जरिए लोगों के दिमाग कायल करते हैं, बसाव का देखा गया है कि ऐसे इस्लाम में दाखिल होने वाले जो इन दरवाजों से दाखिल होते हैं, इसी किस्म के वसवसों के दरवाजों से बाहर भी चले जाते हैं और उन्हें दवाम नसीब नहीं होता। लेकिन नेक आदमी अगर एक नेक आदमी पैदा कर दे तो उसका बराह रास्त खुदा से ताल्लुक पैदा हो जाता है और नेक आदमी को फिर करार मिलता है, उसको दवाम नसीब होता है। चुनाचे कुरान करीम ने कलेमा तैयबा और कलेमा खबीसा में इन दोनों बातों का मुआवजा फरमा दिया। फरमाया कलेमा तैयबा वो है जिसकी जड़ें पैवस्ता हो जाती है और रिज्क वो खुदा से और आसमान से हासिल करता है, उसकी शाखें आसमान में फैलती हैं और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की बरकत से हर हाल में उसको फल लगते रहते हैं। तो जो इंसान खुदा को हासिल करने के बाद उससे ताल्लुक जोड़े और बासमर बन जाए, उसके उखड़ने या उसके बिदकने या उसके भटकते फिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ऐसा शख्स जो खुद बाखुदा हो और नेकी की अहमियत को ना सिर्फ यह कि जहनी तौर पर समझता हो बल्कि अपने दिल को नेकी की राह पे डाल चुका हो, खुदा के हजूर अपना सरे तस्लीम खम कर चुका हो, उस शख्स के बनाए हुए अहमदियों में भी वैसी असरात सरायत कर जाते हैं, वैसी खसूसियात पैदा हो जाती है। हजरत मुस्लिम माऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाया करते थे कि मैं नए अहमदी को देखकर अक्सर ये सही अंदाजा लगा लेता हूं कि ये किसकी तबलीग से हुआ होगा। फरमाते थे कि अगर कोई मुबल्लिग कंजूस हो और चंदों में कमजोर हो तो उसके जरिए बने हुए अहमदी भी कंजूस और चंदों में कमजोर ही निकलते हैं। जो शख्स तबलीग का शौक रखता हो लेकिन नमाजों में कमजोर हो, उसके बनाए हुए अहमदी भी तबलीग का जोश तो रखते हैं लेकिन नमाजों में कमजोर होते हैं। इसलिए कि हर शख्स अपनी मोहर दूसरे पे सब कर रहा होता है। इसीलिए हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बाला मुकाम नबियों की मोहर का है। ऐसी मोहर है जो नबूवत पैदा करती है। ऐसे अजीम उस मोहर के नकूश हैं कि नबूवत की तरह तकवा के नकूश अदा करती है। बस ये तो आपकी मोहर का नक्श आपका चेहरा दिखाएगा। आप जब एक नया एमडी पैदा करते हैं तो दरअसल आपकी मोहर ने एक नक्श पैदा कर दिया, उस नक्श में आपके चेहरे दिखाई देंगे। और अगर आपके चेहरे में खुदा दिखाई देता है, अगर आपके चेहरे को खुदा का चेहरा कहां करार दिया जा सकता है, तो जितने नकूश आप बनाते चले जाएंगे हर नक्श खुदा की तरफ इशारा कर रहा होगा, हर नक्श के चेहरे में खुदा के वजूद दिखाई देने लगेंगे। और इस तरह एक ऐसे इस्तेहकाम के साथ जमात फैलेगी कि हर कदम जो उठेगा वो मुस्तहकम होता चला जाएगा। बस इस दुनिया में जबकि खुदा की तलाश तो है लेकिन लोगों को इल्म नहीं कि कैसे हासिल किया जाए, जब सकीनत की तलाश तो है लेकिन पता नहीं कि सकीनत कैसे हासिल की जाती है, यही गुर है और यही एक राज है, इसके सिवा और कोई गुर और कोई राज नहीं। आप खुदा का चेहरा बनने की कोशिश करें, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करें, खुदा से प्यार पैदा करें और खुदा की जात को अपनी जात में झलकता हुआ दिखाने की कोशिश करें। ये झलकियां हर मोमिन में होती हैं लेकिन बाद मोमिनों में आनंद फानन झलकियां आती हैं और आनंद फानन चली जाती हैं। कभी खुदा की चमक दिखाई दी, क्योंकि जब तक खुदा की चमक किसी दिल में जाहिर ना हो मोमिन बन ही नहीं सकता। इसलिए हम में से जो कमजोर भी हैं, बद भी हैं, हर किस्म के अमली, ईमान की वजह से कोई ना कोई हालत उनके दिलों पर जरूर तारी हुई होगी कि उन्होंने खुदा को अपने वजूद में झलकता हुआ देखा होगा, बाद खतरात के वक्त दुआओं के जरिए कबूलियत से दुआ का निशान देखा होगा, कभी किसी रंग में कभी किसी रंग में। गर्जे के मोमिन होते हुए यह नामुमकिन है कि खुदा कभी दिखाई ना दिया हो या अपनी जात में चमका ना हो, लेकिन ये वजह रब्बे का नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि वजह रब्बे का में एक मुस्तकिल हकीकत बताई गई है, आर्जी झलकी का नक्शा नहीं खींचा गया। हकीकत में मोमिन बाखुदा उस वक्त बनता है जब खुदा उसकी जात पर गालिब आ चुका हो, जब उसे यह शऊर पैदा हो जाए कि खुदा के साथ रहता हूं। फिर अगर वक्ती तौर पर वो छुट्टी करता है, कोई कमजोरी दिखाता है, तो वो आर्जी बात है, वापस फिर इस दायम और कायम रहने वाली हकीकत की तरफ उसे वो जल्द लौट आता है। ऐसे लोग हैं जो महफूज मुकाम पर हैं, बस ऐसे लोगों के बनाए हुए अमली भी लाजमन महफूज मुकाम पर पाए जाते हैं। अल्लाह ताला आपको ये निकात समझने और इन पर अमर करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, अहमदियत का गलबा खुदा के गलबे के साथ होगा। अगर खुदा आप पर गालिब नहीं आया तो जिस अहमदियत को आप लेकर दुनिया पर निकल रहे हैं दुनिया के लिए निकल रहे हैं, वो अहमदियत कभी गालिब नहीं आ सकती। अपने वजूद पर खुदा को गालिब आने दें, फिर देखें कि आपके वजूद को खुदा सारी दुनिया पर गालिब करके दिखाएगा। यही एक तरक्की और कामयाबी का राज है, इसके सिवा और कोई राज नहीं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر नमाज जुमा के ईमान बाद नमाज असर भी साथ जमा होगी। मैं चूंकि मुसाफिर हूं और कुछ और भी मुसाफिर हैं, मुसाफिर दो गाना पढ़ेंगे और बाकी दोस्त जो मुकामी हैं सलाम फेरे बगैर इंतजार करें कि जब इमाम दोनों सलाम मुकम्मल कर चुका हो फिर खड़े हों और बकिया दो रखते पूरी करें।